मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। दोस्तों, मुख्य विषय के तहत मैं आज आप सबसे सिविल सर्विस 2021 के जो फाइनल रिजल्ट आए हैं उनके बारे में कुछ और बातें करूंगा, यदि समय बच गया तो। इससे पहले आइए जो कुछ दूसरी महत्वपूर्ण खबरें हैं उन्हें जान लेते हैं। अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने नए भारत के सामर्थ्य के प्रतीक के रूप में स्टार्टअप की सफलता की बात कही थी, और अभी कुछ ही दिनों पहले भारत का जो 100वां स्टार्टअप है यूनिकॉर्न बना है। देखिए, यूनिकॉर्न हम कहते हैं तो क्या मतलब है, स्टार्टअप कंपनियों की संख्या बहुत है, लेकिन 100वां यूनिकॉर्न कंपनी, उसका नाम है ओपन। फर्म का नाम याद रखिएगा, अगर दूसरे एग्जामिनेशन में हो सकता है कि पूछ लिया जाए। ओपन नाम की जो स्टार्टअप कंपनी है वो 100वीं यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। जब हम यूनिकॉर्न कहते हैं तो उसका मतलब है कि उस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो लगभग 100 करोड़ डॉलर है। लगभग क्या मतलब, 100 करोड़ डॉलर से कुछ ना कुछ अधिक ही होगी, नहीं तो 100 करोड़ डॉलर तो होगी ही। अगर हम कह रहे हैं 100 करोड़ डॉलर तो इसका मतलब है कि आप उसमें 75 का गुणा कर दीजिए, एक डॉलर के बराबर 75 रुपये हैं अभी, हालांकि थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन मोटे तौर पर तो एक कंपनी जिसकी वैल्यूएशन भारतीय रुपए के बारे में अगर हम बात करें तो 7,500 करोड़ अगर हो जाती है तो वह यूनिकॉर्न कंपनी में शामिल हो जाती है। और भारत में इस तरह के 100 स्टार्टअप हो चुके हैं, और इन 100 स्टार्टअप की अगर वैल्यूएशन को मिला दिया जाए तो इनकी वैल्यूएशन करीब 25 लाख करोड़ रुपए होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इन 100 कंपनियों को विदेश की कोई कंपनी या कई कंपनियां मिलकर के खरीद लें तो भारत को 25 लाख करोड़ रुपए मिल जाएंगे, और ये वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति की ओर संकेत करता है। यहां मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, एक बहुत विचित्र सी स्थिति है जो सच्चाई है। अभी मैंने एक और आर्टिकल पढ़ा था कि हमारे यहां 100 यूनिकॉर्न कंपनियां बन गई हैं, लेकिन ये जो कंपनियां हैं इनमें से शायद 3 या 4 कंपनी ही ऐसी हैं जो प्रॉफिट में चल रही हैं, बाकी कंपनियां नुकसान में हैं। तो आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है कि जब ये नुकसान में है तो फिर इनकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा क्यों है। दोस्तों, जो वैल्यूएशन होती है कंपनी की या स्टार्टअप की जो वैल्यूएशन होती है वो एक तरह से यूं कह लीजिए कि भविष्य पर आधारित होती है। अच्छा, इसमें इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, इतना रेवेन्यू है, इतना टर्नओवर है, और खासकर ये जो स्टार्टअप है ये फंड्स लेते हैं, दूसरों से फंड्स लेते हैं। तो देखिए, जब आप दूसरों से फंड्स लेते हैं, मान लीजिए कि एक कंपनी है उसने किसी से 100 करोड़ रुपए ले लिए, तो वो 100 करोड़ रुपए तो उसकी वैल्यूएशन में जुड़ गए। अब ये 100 करोड़ रुपए का क्या कर रहे हैं ये एक अलग बात है, एड में खर्च कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी दे रहे हैं, ऑफिस में और जो दूसरे खर्चे हैं वो लगा रहे हैं, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं उस काम से उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। लेकिन चूंकि 100 करोड़ रुपए किसी ने इनको दे दिए हैं तो 100 करोड़ रुपए इनके वैल्यूएशन में शामिल हो जाते हैं, और फिर दूसरी चीजें भी वैल्यूएशन में शामिल हो जाती हैं। तो जब वैल्यूएशन की बात की जाती है तो आप ये मत समझिएगा कि इस कंपनी को इतना प्रॉफिट हो रहा है। ये बहुत ही विचित्र सी बात है जो बहुत से लोगों की समझ में नहीं आती है कि इनकी वैल्यूएशन तो इतनी ज्यादा है और ये लगातार लॉस में चल रही है, कंपनियां नुकसान में चल रही हैं। हार्डली 3-4 कंपनियां ही हैं जो प्रॉफिट में चल रही हैं, बाकी सब बहुत नुकसान में चल रही हैं। तो इसे आपको थोड़े से संतुलन के साथ समझना होगा, लेकिन एक अच्छी बात है भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती की दृष्टि से कि हमारे यहाँ 100 यूनिकॉर्न कंपनियां बन चुकी हैं जो एक तरीके से अपने आप में महत्व रखती है। दोस्तों, दूसरी बात ड्रोन हब को लेकर है। आपने अभी न्यूज़ में सुना होगा, कुछ दिनों पहले न्यूज़ में काफ़ी विस्तार के साथ आया था कि दिल्ली का जो प्रगति मैदान है वहाँ भारत ड्रोन महोत्सव की शुरुआत हुई है, जिसमें बहुत सारी खासकर इस क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो भाग ले रही हैं। इसकी जो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो बस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये उम्मीद की जा रही है कि 2030 तक भारत ड्रोन हब बनने की स्थिति में आ जाएगा। अभी ड्रोन में जो सबसे ज्यादा दबदबा है वो चाइना का है। भारत लगातार इस तरह की पॉलिसी लेकर के आ रहा है कि जो ड्रोन बनाना चाहते हैं उनके जो विदेशों से आयात होते हैं जो इक्विपमेंट, उनमें आयात शुल्क में छूट दी जाए, उनको और दूसरे तरीके से मदद की जाए। और ये माना जा रहा है कि 2030 तक हम इसमें सफल हो जाएंगे और बहुत जल्दी लगभग 3 सालों में ही इस क्षेत्र में लगभग 5 लाख रोजगार पैदा हो जाएंगे। ये सामान्यतया माना जा रहा है। अगर व्यक्तिगत रूप से मुझसे आप पूछेंगे तो मुझे इसमें कोई बहुत ज़्यादा असंभव सी बात भी नहीं लग रही है, क्योंकि भारत ड्रोन के क्षेत्र में 2 काम बहुत तेज़ी के साथ कर रहा है। एक तो यह कि नई नई कंपनियां तेज़ी के साथ खुल रही हैं, और जो कंपनियां भी खोलने वाले जो उद्यमी हैं वो बहुत ही यंग हैं, जो इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। दूसरा यह है कि ड्रोन का जो मार्केट है, या कह लीजिए इसकी जो उपयोगिता है, वो जीवन के बहुत ही और दूसरे क्षेत्रों में बहुत तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है। मुझे नहीं मालूम कि ड्रोन को आप किस रूप में देखते हैं। अगर शादी ब्याह में आपको जाने का मौका मिला होगा तो आप देखेंगे कि एक छोटा सा ड्रोन होता है चमगादड़ टाइप का, उसमें कैमरा लटका दिया जाता है और वो कैमरा फिर ऊपर जा करके, थोड़ा सा ऊपर जा करके और बाकायदे भीड़ की तस्वीरें लेता रहता है, और एक आदमी हाथ में एक रिमोट सा ले करके उस ड्रोन को कंट्रोल करता रहता है। तो ये तो अब आपको गांव में भी देखने को मिल जाएगा कि लोग इस तरह के फोटो बहुत पसंद करने लगे हैं। लेकिन जो दूसरे क्षेत्र हैं उनमें इसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, और खासकर कोरोना के समय में ये देखा गया कि जो वैक्सीन्स पहुंचाने थी, जो दूसरी चीज़ें खाने की सामान वगैरह पहुंचाने थे, दवाइयां पहुंचानी थी, ड्रोन ने ये सब काम किया। और सोचिए कि हमारे सैनिक जो दूर दराज के स्थानों पर रह रहे हैं, कैसे वहां सामान पहुंचेगा। बहुत से हमारी ऐसी सीमाएं हैं जहां सैनिकों का रहना मुश्किल है, तो वहां आप एक ड्रोन भेज ऊपर छोड़ दीजिए और उसमें कैमरा लगा दीजिए तो आप बकायदे अपनी सीमा की आप निगरानी रख सकते हैं। खेतों में छिड़काव करना है, दवाई का छिड़काव करना है, तो ड्रोन में आप एक ड्रम में दवाई फंसा दीजिए और उसको सेट कर दीजिए, ड्रोन ऊपर उड़ता रहेगा और आपके पूरे खेतों में आपकी सिंचाई छिड़काव हो जाएगा। और बकायदे अब तो ड्रोन किराए पर मिलने लगे हैं, 500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने फसल पर दवाइयों का छिड़काव कर सकते हैं। इस तरीके से ड्रोन अवेलेबल हैं, बहुत सी कंपनियाँ हैं जो इस तरह से आपको उपलब्ध करा रही हैं। और मजेदार बात यह है कि 1 एकड़ में छिड़काव 6-7 मिनट में पूरा हो जाएगा। इसी को हाथ से करने में कितना समय लगेगा सोच के देखिए। जब आप हाथ से पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो बहुत से क्षेत्रों में अब इसका प्रयोग होने लगा है। मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप मेंशन कर सकते हैं कि अभी जो बकायदे असम और मेघालय में जो सीमा समझौता हुआ है, तो जो सीमा समझौता हुआ उसमें ड्रोन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ड्रोन ने बकायदे चित्र खींचे और चित्र खींच करके जो भी उनके सामने तथ्य पेश किए होंगे, तो उन तथ्यों को देखने के बाद फिर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपने सीमा विवाद को सुलझाने का निर्णय लिया। आप सोचिए कि कितनी उपयोगिता है। नक्सलाइट एरिया के बारे में आप सोचिए कि कितनी बड़ी हमारी नक्सलाइट की प्रॉब्लम है। आप अगर सड़क से जाते हैं, उनका पता लगाते हैं, तोआप अपने जीवन के लिए खतरा मोल ले रहे हैं। लेकिन ड्रोन के जरिए बकायदे आप पता लगा सकते हैं, सर्विलियंस कर सकते हैं कि कहाँ छिपे हुए हैं, कहाँ उनकी क्या एक्टिविटीज़ है। तो सच पूछे तो अब तो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि ड्रोन एक सामान्य जीवन का हिस्सा बन जाएगा। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जोमेटो जैसी कि जो अपना सामान तक पहुंचाने के लिए, जैसे आप कोई ऑर्डर करते हैं भोजन का तो बकायदे ड्रोन के जरिए वो पहुंचा देंगे, क्योंकि जो बड़े बड़े शहरों में ट्रैफिक जैम की स्थिति होती है। आगे तो ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि एयर टैक्सी की जगह ड्रोन ले लें, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो प्रोग्राम आया था टीवी पर, वो मैंने डीडी न्यूज़ पर वो देखा था बहुत विस्तार के साथ, और बड़ा इंटरेस्टिंग भी लग रहा था। आप सोच करके देखिए कि प्रगति मैदान में जो ये मेला लगा हुआ है, इसमें 1600 कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। 1600, यानी कि हमारे यहाँ इतनी कंपनियां हैं जो ड्रोन बना रही हैं। अभी जो प्रॉब्लम आ रही है, उसी बातचीत में ये बताया गया था कि पायलट को लेकर के जरूर प्रॉब्लम है। तो ठीक है, पायलट भी तैयार हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और नो डाउट कि भारत के सामने एक प्रकार से ये एक बहुत अच्छा अवसर है, और मुझे लगता है कि 7-8 सालों में तो भारत ड्रोन का हब बन ही जाएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है, उसने अभी 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं, और मुझे लगता है कि ये आपको नोट कर लेना चाहिए। इससे रिलेटेड जो एडिटोरियल कमेंट दैनिक भास्कर का था कल का, वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था शायद आप लोगों ने उसमें से नोट किया भी होगा, लेकिन कल मैं उस पर आपका ध्यान नहीं ले जा पाया था, तो आज मैं स्पेशली इसके बारे में बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, बोलने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, जरा माफ कीजिएगा, तो ये जो रिकमेंडेशन देती है तो आप मान करके चलिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन होती हैं। तो दो सिफारिशें उसने की हैं। पहली सिफारिश है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा है, गारंटी रोजगार योजना चल रही है, इसी तरह से शहर में भी रोजगार गारंटी योजना चलाई जानी चाहिए। इनका मानना यह है कि शहरों का भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो वास्तव में गरीबी से जूझ रहा है, खासकर झोपड़ा पट्टी में जो रहने वाले लोग हैं डेफिनेटली इससे जूझ रहे हैं, तो अगर उनके लिए भी कोई इस तरह की रोजगार गारंटी योजना चलाई जा सके तो उससे जो अमीर और गरीब की जो खाई है वो कुछ सीमा तक दूर हो सकेगी। और अमीर और गरीब की खाई के बारे में ही जो दूसरी रिकमेंडेशन है वो ये है कि सभी को एक न्यूनतम बेसिक आय प्रोवाइड की जानी चाहिए, मिनिमम बेसिक इनकम। और ये बात अभी से नहीं, पिछले 7-8 साल से पूरी दुनिया में बहुत तेजी के साथ चल रही है कि भाई जो भी व्यक्ति हैं उन्हें न्यूनतम बेसिक आय तो दी ही जाए ताकि कम से कम उनके जो जीवन जीने की जो जरूरतें हैं वे पूरी हो सके। इसमें उन्होंने एक बात और भी कही है कि हमारे यहाँ जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर की हालत बहुत खराब है, और जब कोई भी व्यक्ति जो गरीबी रेखा के आसपास है जब उनका कोई भी सदस्य बीमार पड़ जाता है तो उसके इलाज कराने में उन्हें इतना ज्यादा खर्च करना पड़ता है कि वो गरीबी रेखा के नीचे पहुंच जाते हैं। तो फिर इनका कहना है कि सरकार को जो सामाजिक कल्याण के जो क्षेत्र होते हैं उनमें अपने खर्च को लगातार बढ़ाना चाहिए, जिसे हम सामाजिक सुरक्षा योजना कहते हैं, क्योंकि सरकार अगर उसमें अपना खर्च बढ़ाएगी, जैसे कि अभी मैंने हेल्थ सेक्टर की बात की, अगर हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल हैं अगर वेल इक्विप्ड हो जाते हैं, वहाँ इलाज बहुत अच्छे से और सस्ते में हो जाता है, तो फिर ये जो इनकम की जो डिस्पैरिटी है वो डिस्पैरिटी उतनी नहीं रह पाएगी। दोस्तों ये जो रिकमेंडेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, प्लीज़ आप इन्हें नोट कर लें। मैं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बात कर रहा हूँ और कल के एडिटोरियल कमेंट में ये बहुत डिटेल में और विस्तार के साथ अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो दोस्तों अब चूंकि वक्त नहीं है तो मैं मुख्य विषय के बारे में अब कुछ बात करने की स्थिति में नहीं हूँ, कल हम लोग इस पर और बातें करेंगे। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड की जा रही हैं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, श्रुति अग्रवाल बिजनौर उत्तर प्रदेश से, विजेंद्र चौहान हरिद्वार उत्तराखंड से, दीप जे दास नॉर्थ ईस्ट से, सीतांजलि बिस्वाल ओडिशा से और शिवांगी पांडे प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।